बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम हरि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्ति दिव्येस्तवे वेदैशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः व्याप्तिदेव्ये नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भद्रं नो अभिवातय मनः ॐ शांति 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जप मन नारायण 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 जप मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 रट मन नारायण नारायण जल थल नारायण 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 जल थल नारायण 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 सब जग नारायण 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 सब जग नारायण नारायण यण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्तम नाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्रभु की असीम अहितु की कृपा के साथ सांख्य योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय और भगवान के द्वारा योग प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ अध्याय है। यूं तो संपूर्ण भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई ये भगवान का शाश्वत प्रसाद है। जिस प्रसाद को पाकर प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ग्लानी दूर होती है, परम आश्रय मिलता है, मन को विश्वास और भरोसा देता है, ऐसी जो भगवान की पावन वाणी है श्रीमद् भगवद गीता और उसके 48वें श्लोक को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। योगस्य कुरु कर्माणि संगत तत्त्वाधनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोगमुच्यते। योगस्तु कुरु कर्माणि योगासीन होकर समत्व योग मुच्यते। विचार चल रहा है कि जीवन में समता की प्राप्ति हो, जीवन कैसा हो, बोले सम हो। ये हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बोले जीवन समता से युक्त होना चाहिए। असमता असमानता हमारे जीवन के लिए कष्टकारी है और समता जीवन के लिए परम सुखकारी है। समता में परम सुख है और विषमता में परम दुख है। समता जीवन का योग है, विषमता जीवन का वियोग है। जीवन में समता बनी रहे, ईश्वर और अपने आप को सम स्थित करने के लिए अपनी बुद्धि को ईश्वर शरणांगति भगवान की शरणांगति में रखें, क्योंकि भगवत शरणांगति ही जीव के लिए परमाश्रय है। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, युद्ध होना निश्चित हो गया है और युद्ध का परिणाम प्रिय भी हो सकता है और अप्रिय भी हो सकता है। यदि इस युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त हो गया, युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर गया, तो मेरे वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत फिर आपकी इस युद्ध में क्या भूमिका रहेगी, ये मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पहले तो ऐसा होगा नहीं, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हो गए उसके उपरांत पीछे की भूमिका जानना चाहते हो मेरी, तो मेरी भूमिका यही रहेगी कि मैं सुदर्शन चक्र को लेकर सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगा, सकल सृष्टि में प्रलय कर दूंगा। अर्थात ये स्पष्ट है कि नारायण को नर बहुत प्रिय है और भगवान ने कहा है, स्वयं प्रियोषि मे, तुम मेरे बहुत प्यारे हो। यदि ये कहा जाए कि ईश्वर की प्रियता किसमें है, तो ये कहना होगा कि ईश्वर को प्रिय ये जीव है, मनुष्य है। नारायण को प्रिय नर है, नर के बिना नारायण को ये सृष्टि भाती नहीं है। इतना प्रेम अर्जुन के बिना भगवान कृष्ण नहीं रह पाते हैं। जहां अर्जुन हो वहां कृष्ण निश्चित होंगे, और जहां कृष्ण होंगे वहां निश्चित रूप से अर्जुन होंगे, अनुमान कर लिया जाता है। कृष्ण के बिना नर के बिना नारायण नहीं, नारायण के बिना नर नहीं। नारायण को तो नर इतना प्रिय है, परंतु नर देही तो हम सबों को भी प्राप्त है, पर नर शरीर पाकर के नर नहीं हो जाता। नर तो वो है जो नारायण को प्रिय है। वस्तुतः भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु हमारा प्रेम भगवान के लिए न होकर संसार के लिए प्रेम है, और संसार के प्रेम में दिन रात संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। हम कहते तो हैं कि हम संसार से प्रेम करते हैं, सच यदि विचार किया जाए गंभीरता पूर्वक तो संसार के प्रति जो हमारा, जिसे हम प्रेम के संबोधन दे रहे हैं, वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है, आसक्ति है, राग है। पर अज्ञानतावश इस राग को, इस आसक्ति को, इस मोह को हमने प्रेम का संबोधन दे दिया है, प्रेम समझ लिया है। पर वास्तविकता ये है कि जिसे हम संसार का प्रेम समझते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल प्रेमास्पद से होता है, वो सबका अपना प्रेमास्पद तो केवल अपना स्वरूप आपा ही होता है, क्योंकि आपा अपने आप से ही अपने आप की प्रियता होती है। नारायण सबसे प्रिय कौन है? बोले सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना आपा है। संसार में धन प्रिय है, और धन से भी प्रिय पुत्र है। पुत्र से भी प्रिय कौन है? बोले आत्मा है। उदाहरण के लिए एक पिता और पुत्र स्नान करने के लिए नदी में गए हैं। नदी में नहाते नहाते बालक नदी में डूब रहा, बह रहा है, और अपने और बहते हुए उस बालक ने चिल्ला करके, हाथ ऊंचा करके आवाज लगाई, बचा लो बचा लो। पुत्र के बहते हुए देखकर पिता और जोर से चिल्ला रहा है, कोई मेरे पुत्र को बचा ले बचा ले, वो डूब रहा है, देखो देखो वो डूब रहा है, बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो। वो तैराकों को आवाज लगाने लगा और बड़ी तेजी से तैराक गए, बच्चे को तो बचा लिया। और जब वो बाहर निकल आया, और निकल आने के उपरांत पुत्र स्वस्थ हो गया, तो वो उचित सबको, उसने बड़ी जोर से कहा था, जो मेरे बच्चे को बचा लेगा उसे मैं मोह मांगा, उसे पारितोषिक दूंगा, उसे बहुत सारा धन देकर प्रसन्न करूंगा। जब धन देने की बात आई, एक सज्जन ने उससे पूछा, कहा, महानुभाव आप बड़े जोर से चिल्ला रहे थे, आओ मेरे बच्चे को बचा लो बचा लो, बच्चे को, आपको अपना बच्चा इतना प्रिय था तो वो डूब रहा था, उसे बचाने के लिए आप स्वयं क्यों नहीं दौड़े, क्यों नहीं आगे बढ़े आप? उसने ये कहा कि देखो मैं आगे कैसे बढ़ता, कि मैं डूब जाता, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं डूब जाता। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को धन बहुत प्रिय है, और धन से भी अधिक प्रिय कौन है? बोले पुत्र है। और यदि पुत्र से भी प्रिय कौन है? अपना शरीर प्रिय है। देह प्रिय है, मैं मर जाऊंगा, इस डर के मारे वो नदी में नहीं गया। और ये शरीर किससे प्रिय है? यदि शरीर की ही प्रियता होती तो इस शरीर को बाद में भी संभाल करके पास में रखते, परंतु नहीं रखते हैं। शरीर के थोड़ी देर बाद ले जाओ, ले चलो, ले चलो, ले चलो, तैयारियां होने लगती हैं। जल्दी करो, बस ज्यादा देर नहीं रखना, बास आ जाएगी, सड़ जाएगा। और किसी कारणवश रख भी लिया, यदि वही जो हमें इतना प्रिय है और वही कुछ रात्रि के समय में स्वप्न में आ जाए तो हम डरने लगते हैं, भूत आ गया। जो इतना प्रिय था वो इतना भयावह बन गया। तो कहने का अर्थ था कि मनुष्य को शरीर प्रिय है, और ये शरीर किसके लिए प्रिय है? आत्मा के लिए प्रिय है। सबका परम प्रेमास्पद कौन है? बोले इसी शरीर में जो अपना आपा है, आत्मा है, वही सबका प्रिय है। और आत्मा की प्रियता के लिए ये सब प्रिय हैं, और सबके लिए आत्मा प्रिय नहीं है। ऐसे जो परम प्रेमास्पद आत्मा है वह आत्मा ही नारायण है, वह आत्मा ही परमेश्वर है, ब्रह्म है। उसमें कोई परमात्मा आत्मा ही कृष्ण है। इस प्रकार जो आत्मा नारायण है वही सबका परम प्रिय है। परंतु हमने समझ लिया है कि ये हमें धन प्रिय है, शरीर प्रिय है, परिवार प्रिय है, संसार प्रिय है। इसे हम जो प्रिय कहते हैं वास्तव में ये प्रिय नहीं है, इनके प्रति होने वाली आसक्ति है। और ये आसक्ति हो गई है संग के कारण, अज्ञानता के, इनकी इनके साथ जो आसक्ति बन गई है। भगवान कहते हैं संग तत्वा, इनकी आसक्ति छोड़ करके भगवान के साथ आसक्ति हो जाए, अपने स्वरूप भूत के स्वरूप में स्थिति बन जाए, स्थिरता बन जाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपकी उसके बाद क्या भूमिका रहेगी? भगवान को ये सकल सृष्टि नर के बिना नहीं भाती है। परमात्मा ने सकल सृष्टि की जब रचना करनी आरंभ की, इसमें जलचर, थलचर, नवचर सभी प्रकार के प्राणी पैदा किए, परंतु विशाल सृष्टि को रचने के उपरांत भी ईश्वर को संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। ईश्वर ने अंत में मनुष्य की रचना की, और इस रचना को, ये रचना ईश्वर के, ईश्वर के मन इतनी भा गई, इतनी प्रियता हो गई कि इस प्रियता के कारण स्वयं इसमें आकर बसना उन्होंने स्वीकार कर लिया। अर्थात नारायण को ये मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर के साथ भगवान को भी प्रियता है, परंतु ऐसे ईश्वर प्रिय देह को पाकर हम ईश्वर के साथ प्रीति न कर सके, केवल हमारी सांसारिक वासनाएं रह गईं, तो ये हमारे लिए अत्यंत शोचनीय बात होगी। नारायण भगवान तो कहते हैं प्रियोषि मे, तुम मेरे बहुत प्यारे हो, यदि ये नहीं होगा तो ये सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं प्रलय कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। भगवान को सृष्टि का प्रलय हो जाना प्रिय है, परंतु नर न रहे ये बात प्रिय नहीं है। और हमको भगवान के चरणों में प्रणाम भी करते हैं, शरणागति भी कहते हैं, पर भगवान से क्या चाहते हैं? बोले भगवान से संसार चाहते हैं, संसार की प्रियता के, संसार की प्रियता हमारी बनी रहे। संसार में जो जो हमको प्रिय है वो सब हमारे साथ बने रहे, कोई नष्ट न हो, उसके लिए हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं, ये सकामता है ना, सकाम भाव। इसीलिए गीता में बार बार भगवान ने निष्काम भक्ति का वर्णन किया है। भगवान के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए, बोले सकाम नहीं, निष्काम। और निष्काम भक्त को ही भगवान की प्राप्ति होती है। निष्काम कौन है, बोले विदुर जी महाराज हैं भागवत में। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक रात्रि को महाराज धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही थी, बड़ी व्याकुलता हो रही थी। रात्रि के समय में उन्होंने विदुर को अपने पास बुलवा लिया। विदुर जी को बुलवाया और विदुर जी से जब उन्होंने प्रश्न किए, अपनी व्याकुलता का कारण उन्हें बताया कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है अर्थात मन में बेचैनी है। और व्याकुलता अशांति है जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, विदुर ने साफ साफ उन्हें समझाया। जो विदुर ने समझाया उसको विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया कि आपको पांडवों का अधिकार, पांडवों का राज्य पांडवों को सौंप देना चाहिए। जिसकी वस्तु है उसे लौटाकर आप निश्चिंत तो हो जाइए महाराज, परंतु धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा राज्य की इतनी प्रबल है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि विदुर जितनी बात बढ़िया बात तुम्हारी सुनने में लगती है उतनी बढ़िया बात करने में नहीं लगती, जितनी सुनने में अच्छी लगती है उतनी ही तुम्हारी बातें करने में बहुत कठिन है विदुर, बहुत कठिन है। और ऐसे समय पर दुर्योधन ने आकर कुछ कटु शब्द कहे और विदुर जी ने उसी समय महाराज धृतराष्ट्र के पास अपने शस्त्र छोड़कर और उसी समय तीर्थ यात्रा के लिए वो प्रस्थान कर गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके हैं और नाना तीर्थों का भ्रमण करते रहे। और महाभारत के इस युद्ध में अर्थात शस्त्र रख दिए और स्वयं निकल गए का अभिप्राय ये था कि उन्होंने पक्ष परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को तटस्थ कर लिया अर्थात अपने आप को तटस्थ कर लेना, सम कर लेना। न वो पांडवों के पक्ष में गए और न कौरवों के पक्ष में गए, अपने आप को दोनों पक्ष से तटस्थ कर लिया, सम कर लिया और यात्रा के लिए निकल गए। यात्रा के लिए जब निकले, भ्रमण करते करते यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं और उद्धव जी बद्रिकाश्रम को जा रहे हैं। दोनों की भेंट हो गई यमुना के तट पर। यमुना के तट पर जब भेंट हुई तो उद्धव जी से मिलकर विदुर जी ने द्वारिका का कुशल समाचार जाना और कुशल समाचार जानते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद किया। और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए वो कहते हैं, क्या कभी प्रभु मुझे भी याद करते हैं? उद्धव जी ने कहा, विदुर जी भगवान निश्चित रूप से आपको याद किए हैं। सारी कथा भागवत में आती है, महाभारत में आती है, पर संकेत में मैं आपको कहना चाह रही थी कि विदुर जी ने उनसे पूछा कि क्या भगवान भी कभी मुझे याद करते हैं? उद्धव जी ने कहा, निश्चित रूप से प्रभु ने आपको याद किया। और क्या कहकर याद किया भगवान ने ये याद किया? ये कहकर याद किया कि आज तक मेरा एक भक्त ऐसा है जिसने कभी मेरे आगे कोई मांग नहीं मांगी, जिसने कभी मेरे से मांग मांगने की कामना तक नहीं की। मैं वासुदेव कृष्ण से कुछ मांगू ऐसी कामना भी जिसके अंदर कभी उत्पन्न नहीं हुई, मांग कामना की कामना भी जिसके अंदर कभी जन्म नहीं ली, ऐसा निष्काम एक मेरा भक्त है। निष्काम भक्ति का उदाहरण विदुर जी है नारायण, जिसने कभी कुछ मेरे से नहीं मांगा है। इसलिए भगवान ने मैत्रेय की ओर इशारा करते हुए कहा, मैत्रेय इस समय का दिया हुआ ये मेरा भागवतो उपदेश अर्थात भक्त का धर्म, भक्त का आचरण, भक्त कैसे होते हैं, भगवत तत्व को भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने वाले भक्त महाभागवत हैं, भागवत का स्वरूप क्या है, जो भगवान ने वर्णन करके सुनाया उद्धव को और मैत्री जी को, कहा कि ये मेरा इस समय का दिया हुआ उपदेश तुम विदुर जी को सुना देना। मैत्री जी को जो उपदेश दे रहे हैं वो मैत्री के लिए नहीं है, वो विदुर जी के लिए भगवान भेज रहे हैं। अर्थात विदुर जी ने तो कभी भगवान मुझे उपदेश दे ऐसी भी चाह नहीं की। विदुर जी को ज्ञान स्वयं भगवान ने अपनी ओर से दिया, अर्थात जो भगवान से निष्काम प्रेम करते हैं उन्हें भगवान स्वयं अपना ज्ञान देते हैं, अपनी पहचान देते हैं। ज्ञान देते हैं कहने का अभिप्राय अपनी पहचान देते हैं, अपने को जना देते हैं, बता देते हैं, सोई तुम्हें जान्यू जेहू देही जनाई, उसी को भगवान अपने अपना ज्ञान देते हैं, अपने को बता देते हैं, जना देते हैं जिसको भगवान चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सोई तुम्हें जान्यू देहू जनाई। वाल्मीकि जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु कौन आपको जान सकता है, वही आपको जान सकता है जिसे आप स्वयं जना दें, बता दें अपने आप को। स्वयं भगवान किसे अपने आप को जनाते हैं, बोले वो कौन, वो भगवान का प्रेमी भक्त जो सिर्फ सिर्फ भगवान से प्रेम तो करता है और प्रेम में उसकी कोई डिमांड नहीं है, कामनाएं नहीं है, इसके बदले में संसार के प्रेम में और भगवान के प्रेम में बड़ा भारी अंतर है ना, बड़ा भारी अंतर है। कैसा अंतर है कि एक बार एक भक्त नित्य प्रति एक संत के सत्संग में जाया करता था। बालक रोज स्वामी जी के पास जाए, सत्संग करे, लौट करके घर आए, धीरे धीरे सत्संग में उसकी रुचि बढ़ती चली गई। घर में माता पिता को तब घबराहट होने लगती है कि जब किसी का बालक ज्यादा यूं तो कहें हमारा बालक बड़ा आज्ञाकारी हो, अच्छा हो, इसमें सारे गुण आने चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जब महात्माओं की संगति में वो कुछ ज्यादा बढ़ने लगता ना तो घर वालों को बड़ी घबराहट होने लगती है कि कहीं ये महात्मा न बन जाए, साधु न बन जाए। और ईमानदारी से नारायण, ये आपको मैं सत्य घटना बताती हूँ कि एक सज्जन का बेटा जाकर महात्मा बनने के लिए, बहुत दिन तक वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा, उसने स्वाध्याय किया, पढ़ा लिखा और उसके बाद जाकर वो महात्मा बनने का निश्चय कर लिया और निश्चय करके वो घर छोड़कर के चला गया। जब घर छोड़ के गया और गया भी बहुत अच्छी जगह और अच्छी तरह से, जहां एक सुंदर परंपरा है वहां जाकर वो जब रहने लगा तो उसके माता पिता रोते विलखते मेरे पास आए और आकर कहने लगे माता जी कुछ भी करो, किसी तरह से भी हमारे बच्चे को वहां से लौटा दो। बस वो इस तरह से रो रहे थे कि जैसे उनके पुत्र ने मानो कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, कोई बहुत बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया हो। यूं तो सब चाहते हैं परंतु महात्मा बने मेरी संतान ये कोई नहीं चाहता। सबको डर होने लगता है कि कहीं ये साधु ना बन जाए। बड़ी जोर जोर से रोने लगे, माता जी आप कुछ भी करें, आप अपनी शक्ति को दिखाएं। क्या कोई बालक परमार्थ के लाख मनुष्याणाम सहस्रेशु भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से छट करके कोई एक विरला मनुष्य भगवान की ओर भगवत पथ पर सतपथ पर अग्रसर होता है तो उसको हटाना कोई उचित बात है? परंतु नहीं, हमें संसार का अभ्यास पड़ा हुआ है, हमें लगता है कि ये संसारिक मार्ग ही श्रेष्ठ है। बड़ी घबराहट होने लगती है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलते हुए देखकर माता पिता को भी इस बालक की बड़ी घबराहट होने लगी और उन्होंने सोचा कि इसे जल्द झटपट कहीं महात्माओं का साधुओं का इस बालक पर रंग चढ़े उससे पहले इसकी शादी कर दो, फिर तो ये संसार में फंस जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। माँ बाप ने उसे घेर कर किसी तरह से उस बच्चे की शादी कर दी और शादी हो गई। शादी होने के उपरांत पत्नी कहे, बस आप मेरे से दूर चले जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप मत जाओ। धीरे 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 माता पिता और पत्नी सभी मिलकर उसके साथ साथ रहने लगे, उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे वो उससे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। बालक धीरे धीरे समझ नहीं पाया और उनके इस उसमें आ गया और आने के बाद वो धीरे धीरे उसका सत्संग जाना कम हो गया। एक दिन एक संत जिनके पास जाकर वो सत्संग करता था रास्ते में मिल गए और रास्ता में संत को देखकर उस बालक ने रास्ता बदल लेना, मोह मोड़ लेना उचित समझा कि सामने से महात्मा आएंगे, मेरे से पूछेंगे, मेरे से दो बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, सत्संग में क्यों नहीं आते हो, इससे अच्छा है, ये सोचकर रास्ता बदलने लगा। महात्मा उसी के रास्ते से निकल गए, आमने सामने हो गए, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और महाराज ने कुशल से पूछी और कहा, बेटा आजकल सत्संग में नहीं आते, क्या करूं गुरुजी? घर में सभी लोग इतना ज्यादा स्नेह रखते हैं मुझसे कि वो मुझसे मेरे को देखे बिना उन्हें चैन नहीं होता, मेरे साथ ही भोजन करते हैं, संग संग रहते हैं, इसलिए मुझे समय ही नहीं मिलता है। महात्मा ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये तुम्हारे घर वाले तुमसे इतना स्नेह करते हैं, तुम्हें पूरा विश्वास है? बोले, हाँ हाँ महाराज, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। कहने लगे, बेटा तुम इसे नहीं समझोगे। कहने लगा, महाराज ये कैसे हो सकता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं कर सकते? अच्छा, तो चलो परीक्षा करोगे? बोले हाँ। महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम जाना और कल सुबह मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। मैं घर में आऊं समय निश्चित किया, उससे पहले तुम एक काम करना कि मेरे पेट में बहुत भयंकर दर्द है, ये सोच कहकर दर्द 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 कहते हुए तुम दर्द का बहाना बनाकर लेट जाना। महात्मा ने, बालक ने यही किया। महात्मा गए, महाराज बहुत अच्छे समय आ गए, देखो हमारा बेटा दर्द के मारे तड़प रहा है, पत्नी कहे तड़प रहे हैं, सारा घर उसके बालक के आसपास घूम रहा है, नाच रहा है और बड़े परेशान हो रहे हैं। गुरुदेव पहुँचे और पहुँचकर नाड़ी देखी और देखकर कहा कि हाँ, इसकी हालत तो बड़ी गंभीर दिखाई पड़ती है, इसे तो भयंकर पीड़ा दिखाई पड़ती है और ये पीड़ा कष्ट तो मुझे दिख रहा है इस बालक का कि बहुत भयंकर है। तब महाराज क्या होगा, घर वाले बड़े घबराए, कहा कि ये पीड़ा तो किसे लेकर के जाएगी, अब तो और घबराए, सब रुदन करने लगे, रोने लगे, महाराज आप तो महान हैं, आप कृपा कीजिए कि कुछ कृपा कीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, किसी तरह से भी कोई उपाय कीजिए, जैसे भी हो कुछ कीजिए। महाराज महात्मा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। महात्मा ने कहा कि अच्छा तो एक काम करो, देखो जो भावी होनी है वो हुए बिना टल नहीं सकती, पर होनी को बदला जा सकता है। बदला ये जा सकता है कि इस बालक के बदले कोई और चला जाए, अपनी आयु इस बालक को दे दे, यही एकमात्र उपाय मुझे दिखता है, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं। पिता ने जब सुना तो अपने लिए सोचने लगा, महाराज मैं क्या करूं, मैं चला जाता पर मेरे और जो बच्चे हैं इनका क्या होगा, इनका दायित्व भी तो मेरे ऊपर है, मैं एक ही नहीं और इन बच्चों का भी तो पिता हूं, इनके लिए भी तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। पिता ने अपनी मजबूरी बताई, पत्नी ने अपनी मजबूरी बताई और माता ने अपनी मजबूरी बताई, सब अपनी अपनी मजदूरी बता ही रहे थे। इतने में पड़ोसी जो आए थे सोचा कि जब इनके ऊपर ये बात आ रही है कहीं हमसे न पूछ लिया जाए, इससे पहले कि वो पूछने के लिए आए उससे पहले पहले सब अपने अपने घर को निकल गए, खिसक गए, केवल घर वाले वहाँ पर खड़े थे। महात्मा ने कहा अच्छा भैया तुम सबको तो कुछ न कुछ काम है, जरूरी काम है, तुम्हारे बिना हो नहीं सकता, परंतु मैं ही एक ऐसा निकम्मा निठल्ला हूँ जिसे कोई काम नहीं है, जिसके लिए आगे पीछे कोई किसी तरह का काम नहीं है, बस मैं ही एक खाली ऐसा हूँ, इसलिए चलो मेरे जाने से मेरी आयु लगकर ये बच्चा ठीक होता हो तो मैं ही ऐसा कर लेता हूँ। और महात्मा ने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम गरम दूध लेके आओ। गरम दूध मंगवाया और अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली जो शक्कर की थी, दूध में घोली और बड़े आराम से पी लिए और कहने लगे महाराज आपने बड़ा पुण्य का काम किया, बड़ा पुण्य का काम किया, माँ हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे, आपकी बड़ी 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 समाधि बनाएंगे, उस पर रोज पूजा करेंगे, रोज आरती करेंगे, रोज घंटा बजाएंगे, महाराज हमारे कुल में आपका ही नाम चलेगा। इस प्रकार सभी संत को प्रोत्साहित करने लगे। महात्मा ने तुरंत वो दूध पिया, क्योंकि सुबह से कुछ जलपान किया हुआ नहीं था, उन्हें मालूम था कि आखिर ये पीना तो मुझे ही है। दूध वहाँ से ले लिया, शक्कर अपने जेब से मिला लिया और दूध पीकर बालक को चूटी काटी और कहा बेटा उठ जा। बालक उठ करके खड़ा हुआ, कहा अब तुझे पता चल गया कि ये प्रेम है या जिसे तुम प्रेम कह रहे थे ये प्रेम कैसा है, तुमने समझ लिया। बालक को विचार हुआ कि ये जो रोते थे सब अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते थे, संसार का प्रेम हम किसी आदमी के चले जाने के बाद बड़ा बड़ा रोते हैं, बड़े आंसू बहाते हैं, पर क्या कहकर, अरे हमारे साथ ऐसे रहता था, ऐसे चलता था, ऐसे बोलता था, अब हमारा क्या होगा, हमारा इतना ध्यान रखता था, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, कौन संभालेगा, हम जाने वाले के लिए नहीं अपने सुख का स्मरण करके रोते हैं, ये आसक्ति है नारायण, इसी का नाम मोह है, राग है। इस राग के कारण संसार में यही हमारी एक आसक्ति है। भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करने वाले प्यारे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना की दुर्गंध नहीं होती है, जिसमें कामना की गंध हो, जिसमें कामना की गंध हो वो प्रेम नहीं कहलाता है, वो तो वासना कहलाती है। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं विदुर जी को अपना ज्ञान दिया। बोले क्यों दिया? क्योंकि विदुर ने भगवान से सिर्फ सिर्फ प्रेम किया था, कभी कोई चाह नहीं रखी थी कि इसके बदले में भगवान मुझे दें। केवल भगवान को याद करना है, केवल भगवान से प्रेम करना है, ये जानकर के प्रेम करते थे। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से प्रेम करना है ये जानकर के प्रेम करते थे। उन्होंने केवल प्रीति भगवान के चरणों में लगाई, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में याद किया। भक्त भगवान को सदैव याद करता है कि जब मेरा आखिरी समय आए तो भगवान मुझे याद आ जाएं, ताकि भगवान याद कर लेंगे तो मेरा जीवन सब जन्म सफल हो जाएगा। ये जानकर भक्त निरंतर भगवान को याद करता है और भगवान भी अपने प्यारे उस भक्त को याद करते हैं, जिस जो भक्त भगवान से सदैव प्रेम करते हैं। तो बड़ी बात ये नहीं है कि भक्त भगवान को याद करे, बड़ी बात तो ये है कि भगवान जिस भक्त को याद करे। तो जिसे भगवान याद करते हैं, भगवान जिसे जानते हैं, जना देते हैं, वो भक्त हैं विदुर जी नारायण। विदुर सम है, उन्होंने अपने आप को तटस्थ कर लिया। न वो कौरवों के पक्ष में गए, न वो पांडवों के पक्ष में गए। युद्ध के समय में विदुर की न्याही जिन्होंने अपने आप को तटस्थ कर लिया हो, ऐसे भक्त को भगवान याद करते हैं। तो भगवान के प्रिय बनने के लिए सोई तुम जाने हो जीव देह जनाई, ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं, किस पर कृपा करते हैं? जो सम होते हैं। और समस्त रह कौन सकता है? बोले जो भगवान का शरणांगत होता है। विदुर भगवान की शरणांगत हैं और शरणांगत होकर अनन्य भाव से वो केवल अनन्य प्रेम के साथ केवल कृष्ण को याद करते हैं। उनकी पत्नी सुशीला कहती हैं, विदुर भगवान की बहुत बातें करते हैं, भगवान को बड़े प्रेम से याद करते हैं और याद करते हैं, भगवान की बातें करते हैं और अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। और ये कहते हैं कि भगवान निश्चित रूप, उनकी पत्नी पूछती है सुशीला कि आप कृष्ण को इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, क्या कृष्ण तुम्हें याद करके कभी तुम्हारे पास आएंगे? और विदुर का दृढ़ विश्वास है कि भगवान आएंगे। सुशीला को कहते हैं निश्चित रूप से आएंगे, भगवान जरूर आएंगे, ये दिलासा दिलाते हैं और हमेशा इस बात को कहते हैं। परंतु जब भगवान आए तो विदुर जी को सूचना देकर नहीं आए, ना संदेश भिजवाकर नहीं आए, आए तो अचानक चले आए। और अचानक चले आए, बोले समाचार कोई नहीं था विदुर जी के पास, वो तो केवल कहते ही थे इस विश्वास के साथ कि भगवान आएंगे। तो निश्चित रूप से भगवान आए, तो जो विश्वास के साथ, दृढ़ भरोसे के साथ भगवान को याद करते हैं, उनके पास भगवान जरूर आते हैं। भगवान को आने के लिए कहीं वैकुंठ से चल करके आना पड़ता हो, कहीं सीर सागर से निकल करके बाहर आना पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है नारायण। भगवान तो वही आ जाते हैं, वही उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं जिस क्षण आपके हृदय का अज्ञान का पर्दा फट जाता है, भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। अर्थात भगवान के अज्ञान का पर्दा, अविद्या का पर्दा फटे, कहीं दूर से नहीं आना है, वो तो आपके हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने आना कहाँ से है, बोले वो तो आपके हृदय में ही साक्षात रूप से विराजमान है। आपके हृदय से निकलकर उस अमूर्त को मूर्त बनाकर सामने खड़ा कर लाकर आपके सामने खड़ा कर देने वाली आपके हृदय की ही, आपके अंदर की ही भावना है, प्रेम है नारायण, जो अब तक अमूर्त थी उसे मूर्तवत बनाकर, निराकार को साकार बनाकर, निराकार को सर्व साकार रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर खड़ा कर देने वाली तो आपकी अंतरंग की भावना है नारायण। आपके भाव से ही प्रकट होते हैं, उन्हें कहीं सीर सागर से चल के आना हो, कहीं बैकुंठ से चलकर आना हो, कहीं वो दूर है, सो ऐसी बात नहीं है। ईश्वर दूर नहीं, मैं हमेशा कहा करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को याद करने से क्या भगवान मिल जाते हैं? भगवान को याद करने से निश्चित रूप से जो सिर्फ सिर्फ जिनका स्मरण करने से, प्रेम करने से प्राप्त होते हैं, तो वो सिर्फ भगवान है नारायण। परंतु भगवान को याद करें, बुलाएं, जैसे नाम लेकर माँ अपने बच्चे को आवाज लगाती है, बच्चा कितनी दूर हो दौड़कर माँ के पास चला आता है, माँ की आवाज सुनकर माँ के पास चला आता है। भगवान उसी तरह से भक्त के पास चले आते हैं, कोई उन्हें पुकारे तो सही, जैसे जिस निश्चय के साथ माँ बुलाती है भगवान सुनते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इच्छा करके, मिलने की इच्छा से चाह करके भगवान मिलते हैं क्या? चाह करके भगवान जरूर मिलते हैं, सिर्फ सिर्फ चाहने से ही मिलते हैं, तो केवल भगवान मिलते हैं। चाहने से मिलने प्राप्ति जिसकी प्राप्ति सिर्फ चाह से है, वो तो केवल नारायण है। बहुत से लोग कहते हैं चाहने से पानी नहीं मिलता तो चाहने से भगवान कैसे मिल जाएंगे? ये संभव है कि चाहने से आपको पानी नहीं मिलता होगा? क्यों नहीं मिलता होगा? कि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि आप पानी को आवाज लगा रहे हैं, पानी पानी पानी, आपकी कोई आवाज नहीं सुनता क्योंकि वो जड़ है। और दूसरी बात ये है पानी के साथ कि पानी आपसे दूर है। एक पहली बात कि वो जड़ है, आपकी आवाज नहीं सुनता, और दूसरी बात पानी आपसे अलग है, तो इसलिए आपको पानी नहीं मिल सकता। परंतु याद रखना, भगवान पानी की तरह आपसे दूर भी नहीं है, पानी की तरह जड़ भी नहीं है। परमात्मा में दोनों चीजें नहीं है, न दूरी है न जड़ता है। वो चेतन है और समीपस्थ है, अत्यंत समीप, अत्यंत सन्निकट, आप में ही सन्निहित है, आप में ही स्थित है। इसलिए वो मिलते हैं तो सिर्फ चाह से मिलते हैं। उनकी चाह करके जो पुकार लेता है, उसकी पुकार सुनकर वो चले आते हैं नारायण। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पुकारो उन्हें, पुकार तो आपके अंदर, यदि आपकी पुकार सच्ची होगी, आप हृदय की गहराई से, अंतर से, अपने अंतस्थ से आवाज लगाकर उन्हें पुकारेंगे तो हरि चले आएंगे। आधे नाम को सुन करके चले आए नारायण, गजेंद्र के लिए चले आए, द्रौपदी के लिए चले आए, विदुर के लिए चले आए। विदुरानी भगवान को सिर्फ याद करके पुकारती थी, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, इन नामों से सदैव उन्हें पुकारा करती थी, और भगवान विदुरानी के पास चले आए, भगवान विदुर के घर मेहमान बन करके चले आए। जिन्होंने उन्हें याद किया उनके पास स्वयं भगवान चल करके आते हैं। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान के पास भक्त मिलने की इच्छा करके चला गया। भगत चलकर वैकुंठ गया और वहां जाकर वैकुंठ पति के दर्शन करके आपने सुना कि एक बार इच्छा की थी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भगवान से नारायण से मिलने की चाह रखकर स्वयं सनकादि ऋषि भगवान के पास चले गए, तो क्या सनकादि ऋषियों को भगवान के दर्शन मिले, वैकुंठ में उन्हें प्रवेश मिला? वो वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, उन्हें वैकुंठ में जाकर भगवान नहीं मिले, परंतु स्वयं उनसे मिलने के लिए भगवान वैकुंठ से जब जय विजय ने रोका, श्राप जय विजय को दिया, भगवान ने देखा कि यहाँ विवाद हो गया है मेरे भक्त के साथ, तो भगवान स्वयं इस विवाद को सुलझाने के लिए स्वयं वैकुंठ पति उनके पास आ गए। परंतु सनकादि ऋषियों को तो, इन ब्रह्म कुमारों को तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, वो नहीं मिल सके। तो भक्त जाकर के भगवान से मिलना चाहे, मैं जाऊं और भगवान से मिलूं, ये बात नहीं है कि भक्त को जाना पड़ता है। आपको न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न कुछ देना है, न कुछ लेना है, कुछ नहीं करना है, फिर आप क्यों कहते हैं कि बहुत कठिन है? आपको कोई परिश्रम नहीं है, परिश्रम तो जाने वाले को होता है। यहां कोई जाने का परिश्रम भी नहीं करना है आपको, वो तो आपके पास स्वयं मिलने के लिए आतुर खड़े हैं, स्वयं मिलने के लिए तैयार हैं, स्वयं जब भी मिले हैं, जिस भक्त को भी मिले हैं, भगवान स्वयं मिले हैं, भक्त कभी भगवान के पास नहीं गया। इसलिए आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस हाल में हो, जिस जगह में हो, उसी जगह रहकर आप तो सदैव यही कहते रहो, जिस हाल में, जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, जिस हाल में, जिस वेश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधे रमण राधे रमण कहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधे रमण राधे रमण कहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधे रमण राधे रमण कहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधे रमण राधे रमण कहो, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधे रमण राधे रमण कहो, जहां पर आप हो बस वहीं अपने आप में ठहर जाओ, वहीं स्थिर हो जाओ, और वहीं स्थिर होकर सोचो विचारो, और सोच और विचार कर अपनी बुद्धि को परमात्मा की शरण में कर दो, केवल ईश्वर की शरण, क्योंकि शरण्य सबको शरण देने वाले वही हैं, उनकी शरण में बुद्धि को कर, मामेकम शरणम व्रज, एक 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 परमात्मा की शरण में अपनी बुद्धि को कर लो, बस बुद्धि सम हो जाएगी, आपके जीवन की समस्या हल हो जाएगी। केवल सम करना है, कुछ नहीं करना है, न पाप करना, न पुण्य करना, न धर्म करना, न अधर्म करना, न ज्ञान करना, न अज्ञान करना, कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप को समचित्त बनाना है, समबुद्धि बनाना है। इतनी सी बात का अभ्यास कर लो, स्थिर हो जाओ। मैं हमेशा कहा करती हूं कि सुबह से लेके शाम तक जहां हो, कुर्सी में, ऑफिस में हो, घर में हो, गाड़ी में हो, मंदिर में हो, कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को शून्य कर लो, खाली कर लो। कुछ क्षणों के लिए भी आप ये अभ्यास करेंगे, मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, केवल आपको कुछ क्षण के लिए अपने मस्तिष्क को खाली करना है, बस ये कुछ क्षणों के लिए दिन में एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, पंद्रह बार, धीरे 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 यदि आप ये अभ्यास करते जाएंगे ना, जैसे एकदम वहीं स्थित हो जाओ, रुक जाओ, खाली कर लो। मैंने कल ऐसे एक चर्चा की थी महाराज जनक की। जनक ने समर्पण किया था अष्टावक्र के आगे, मैं अपने तन मन धन को, धन देना आसान, मन तन देना आसान, परंतु जब मन की बात आई तो अष्टावक्र ने कहा राजन सावधान, क्योंकि मन की बात में हम लोग झूठे पड़ जाते हैं। मन की बात आती है तो झूठे पड़ जाते हैं। महाराज जनक से कहा राजन सावधान, क्योंकि अब मन देने की बात है। जब मन दे दिया तो फिर संकल्प कहां रह गया, विकल्प कहां रह गया। यदि संकल्प विकल्प चल रहा है तो अभी मन का समर्पण नहीं हुआ। सावधान, राजा ने कहा कि ईश्वर मुझसे झूठ न बुलवाए, ईश्वर मेरी रक्षा करे, परमात्मा मेरी रक्षा करे, मैं मन देने जा रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि मन का समर्पण, अष्टावक्र ने उसी क्षण कहा राजन बंद करो ये संकल्प विकल्प को। जब मन दे दिया तो फिर संकल्प कहां रह गया, विकल्प कहां रह गया। जहां संकल्प और विकल्प से रहित मन है वही तो समाधि है नारायण। समाधिस्थ अवस्था में न कोई संकल्प रहता है और न कोई विकल्प रहता है, उसी को समाधि अवस्था कहते हैं। और समाधि अवस्था में परम सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो केवल ये अभ्यास करें अपने आप को कि दिन में एक कुछ कुछ क्षणों के लिए अपने मन को संकल्प और विकल्प से रहित कर, कोई संकल्प न उठे, कोई विकल्प न हो, बस यदि आप ये अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी मन बुद्धि में समता योग का प्रभाव दिखने लगेगा, आपके जीवन में समता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबके लिए परमात्मा के चरणों में शुभकामना करती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
नारायण 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 नारायण। इतना आनंद अनुभव हो रहा था माँ की वाणी से कि ऐसी इच्छा हो रही थी कि सुई की घड़ी, घड़ी की सुई रुक जाए, समय थम जाए और माताजी की वाणी हम सुनते रहें। परमानंद की अनुभूति हो रही थी माँ की वाणी में। सारा जीवन जीने की कला माताजी ने आज के प्रवचन में हमें बता दी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। यह जीवन ईश्वर की धरोहर है। ईश्वर ने यह दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है। किस लिए दिया है? संसार के लिए नहीं दिया कि मोह का त्याग करके ईश्वर से जुड़ जाओ। सब संत हमें यही कहते हैं कि जागो, उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा अंश ही हूं। इन्हीं बातों को हम सुनते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, सुनते हैं भूल जाते हैं। आज माताजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल 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 ईश्वर है, उसके अलावा कहीं शांति है ही नहीं। माताजी ने गीताजी के माध्यम से बताया कि हमारी बुद्धि कैसे स्थिर हो, ईश्वर के चरणों में हम कैसे जुड़े, हमारी आसक्ति जो संसार में है, जो परिवार में है, जो शरीर में है, वो आसक्ति संसार से हटकर ईश्वर से कैसे जुड़े, उसका रास्ता माताजी ने हमें बताया। मेरी माताजी से यही प्रार्थना है कि माताजी, मां, हम तो बार बार भूल जाते हैं, अज्ञानी हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें सद्बुद्धि दें, आपकी कृपा से और ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकें। माताजी ने कहा कि जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है, हमेशा किसी भी हाल में रहो। अभी माताजी ने जो भजन गाया कि किसी भी हाल में रहें, प्रसन्न रहें। गीता में भगवान ने कहा भी है कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ये छुप जाते, प्रसन्न चेत से याशु बुद्धि परिवर्तित। प्रसन्नता से हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उसका विवेक हम हंस की भांति कर सकेंगे। तो हमेशा हमें जीवन में आज एक ये संकल्प लेकर जाना है कि हम किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से माता जी के श्री चरणों की वंदना करता हूं और माता जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि पुष्पों के द्वारा अर्पण करता हूं।
जिस प्रेमपुरी में, जिस सत्संग में सदा संतोष में रहो, संतोषी मां के श्रवण में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण करो। पूज्य माता जी के चरणों में बड़े संतोष से इतने दिन प्रातः और सायं श्री नाम महिमा को लेकर भी बहुत ही आनंद माता जी ने इस समय करवाया। माता जी के चरणों में आप सबकी तरफ से हम वंदन करते हैं। पूज्य माता जी का अगले साल का 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रातः प्रवचन होगा और सायं प्रवचन का धारा भी रहेगी, तो इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।